एक चोबाजी मिले, बोले बाबा जी तुम बहुत कुछ जानते हो, मेरा पेट भारी भारी रहता है। जयराम जी के कुछ इलाज बताओ। मैं क्या क्या खाया था? बोले कुछ नहीं, सुबह इतना मोहन थाल खाया था, इतना मतलब आधा किलो बस। और क्या खाया था? बोले बस थोड़े मालपुए खाए थे और दोपहर को रोटी खाई बस। मैं क्या क्या रोटी खाया? बोले गेहूं के आटे के लड्डू गुजराती बनाते, इतने से लड्डू खाए थे। कितने? इतने लड्डू। और चावल खाए थे इतने, और थोड़ी खमण खाई थी बस। और क्या खाया? बोले थोड़ी जलेबी खाई थी। और क्या खाया? बोले सुबह के जो बचा था प्रसाद मालपुए वो थोड़े खाए। मैं क्या और कुछ खाया? बोले नहीं, और पचता ही नहीं तो क्या खाए। मैं क्या और कुछ खाया था? बोले और तो पात्रा खाए थे। और बोले पूड़ी खाई थी थोड़ी सी। और भी कुछ खाया था? बोले नहीं नहीं बस पूड़ी चटनी और लस्सी पी थी। और भी कुछ? बोले नहीं, जगाई नहीं, पचताई नहीं। मैंने कहा संत कृपा चूर्ण साधक लोग बनाते हैं, तुलसी के पत्ते और कुछ बूटी और दूसरे घरेलू चीजें हैं, आंवला वावला है। वेदों में आंवलों की बड़ी भारी महिमा है, शास्त्रों में। ऐसा संत कृपा चूर्ण स्टाल पर से ले लो, और तुम शरबत बना के तो नहीं पी सकते, जगह नहीं है, तो ऐसा करो संत कृपा चूर्ण लेकर उसकी गोलियां बना लो गुड़ में और दो चार गोलियां खा लो। बोले बाबा जी कैसी बात करते हो, दो चार गोलियां रखने की जगह होती तो दो चार लड्डू और नहीं रख देता मैं। अब बाबा जी क्या करे और संत कृपा चूर्ण बेचारा क्या करे। संत कृपा चूर्ण मल्टीपर्पज है, भूख नहीं लगी तो खा लो तो भूख लगाएगा, और बहुत भूख लगी तो पानी में डाल के पी लो तो भूख को रोकेगा, नाड़ियों को शुद्ध करेगा, स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। खांसी है तो शहद में मिलाकर चट्टो खांसी ठीक हो जाएगी। बुखार है तो गर्म पानी नींबू और संत कृपा चूर्ण डाल के पियो, ठीक हो जाएगा। ये सेवा भाव से बेचारे बनाते हैं, फैक्ट्री के पास हो तो करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन समिति के लोग बेचारे बनाकर सेवा करते हैं, और उसमें जो चीजें हम डालते हैं वो लिखी हुई है। अपने घर में बना लेना संत कृपा चूर्ण और स्वस्थ रहना। फिलहाल स्टॉल वालों से देख लेना, सीख लेना, जान लेना, फिर छोटी छोटी बातों में इंजेक्शन भुकवाना, टेबलेट खाना ठीक नहीं, जरा सा संत कृपा चूर्ण लिया अपना ठीक, जरा सा प्राणायाम प्राणायाम किए तुलसी का रस लिया अपना ठीक। शरीर तंदुरुस्त रखो, मन को प्रसन्न रखो, और बुद्धि को बुद्धि ज्ञाता के ज्ञान से और प्रेम से भर दो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। एक लड़के ने कहा, झोपड़पट्टी में रहते थे, दोनों गरीब थे, उसने कहा मेरे दादाजी तो मेरे दादाजी मर गए ने तो 50,000 रुपए छोड़ गए। दूसरा लड़का समझदार था, बोली गप लगाता है, झूठ बोलता है। बोले बस इतना ही छोड़ गए तेरे दादाजी। बोले तो क्या, तेरे दादाजी मर गए तो कितना छोड़ गए? वो सच्चा लड़का था, उसने कहा मेरे दादाजी मर गए तो 50,000 से क्या होता, वो तो बहुत छोड़ गए। बोले कितना? 1,00,000 रुपया छोड़ गए। बोले नहीं उससे भी ज्यादा। बोले तो क्या 1,00,000 छोड़ गए? बोले 1,00,000 से क्या होता है। अब दोनों झोपड़पट्टी में रहते थे। बोले तेरा दादा 50,000 छोड़ गए, मेरे दादा तो बहुत छोड़ गए। तो बोले कितना? 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000। बोले नहीं उससे भी ज्यादा। तो क्या 50,00,000 छोड़ गए तेरे दादाजी? बोले उससे भी ज्यादा। तो बोले क्या 1,00,000,000 छोड़ गए? बोले उससे भी ज्यादा। बोले क्या 10,00,000,000 छोड़ गए? बोले उससे भी ज्यादा। बोले तू सच बोलने वाला है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या 10,00,000,000 तेरे दादा छोड़ गए होंगे? बोले उससे भी ज्यादा। बोले आखिर बताओ कितने? बोले मेरे दादा मर गए ने तो सारी दुनिया छोड़ गए। सारी दुनिया छोड़ के गए। तेरा दादा तो 50,000 छोड़ गया, तू झूठ बोलता, लेकिन मैं तो बोलता हूँ मेरे दादा तो सारी दुनिया छोड़ के गए। एक मुंजी आदमी था, नौकरों से खूब काम ले अब पैसा कम देवे। वो जब मर रहा था तो उसके नौकर ने कहा कि सेठ जी अब तो आप जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के, सेठ जी अब जाते जाते हमको बोनस तो दे जाओ, दिवाली के दिन है कुछ तो दे जाओ। वो मुंजी सेठ ने कहा कि अरे बेवकूफ नौकरों, मैं अपनी जान दिए जाता हूँ, अब और क्या दूँ, एक पैसा भी नहीं दिया। बोले मैं जान दे के जाता हूँ। तो जिसके जीवन में योग विद्या और आत्म विद्या नहीं है, वे सेठ बनने के बाद भी मन के सेठ नहीं बन सकते। जयराम जी की, साहब बनने के बाद भी मन के साहब नहीं बन सकते हैं। सुखी होने के बाद भी अंतर आत्मा के सुख को नहीं पा सकते अगर योग विद्या भक्ति विद्या आत्म विद्या का आश्रय नहीं है तो बेचारे अंत में ठन ठन पाल हो जाते। एक माई की शादी हो गई लड़की की, उसके पति का नाम था ठन ठन पाल। कई माइयां उसकी मजाक बनाकर बोलती, अरे ओ ठन ठन पाल की लुगाई, ओ ठन ठन पाल की लुगाई इधर आई हो, तेरे आदमी का नाम क्या है? अब नाम से तो बुला रही। तो भाई बिचारी तंग हो गई, अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज यू चेंज योर नेम, ओके आई हैव बिग प्रॉब्लम। रोज मुझे बुलाते टन टन पाल की लुगाई, टन टन पाल टन। उसने कहा मैं चेंज करूं और फिर तुम्हारी सखियां या और कोई माया फिर तेरे को चिढ़ाए, तो रोज रोज ऑफिस में चेंजिंग तो नहीं होता। ओ फर्स्ट संडे आएगा ना, पहला संडे हम लोग अपने मित्रों को बुला लेते हैं, सारे इकट्ठे हो जाए, मेरे दोस्त और तेरी सहेलियां, फिर नाम रख देना तो मैं ऑफिस में अपना वो उर्फ है वो नाम भी रखवा दूंगा। सहेलियां भी आई, उसके दोस्त भी आए, अब कौन नया नाम रखे। सहेलियों ने कहा बहन जी तुम ही रखो, दोस्तों ने कहा भाभी हमारे भैया का नाम तुम ही रखो, कणा प्रसाद तो बनाना पड़ेगा। बोले कणा प्रसाद बनाओ, सीरा वीरा बनाओ, मूंग भी बनाओ, दूध भी जरा तैयार करो मसाला डाल के, मैं सब्जी लेके आती हूँ और मैं जरा नाम भी ढूंढ के आती हूँ। वो सवेरे सवेरे सब्जी मार्केट के तरफ निकली तो गांव के भैंस और गाय जा रही थी, देख माई उनका गोबर चुन रही थी, उसने देखा कि भाई तेरा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम लक्ष्मी है। तेरे की नाम लक्ष्मी और गोबर चुन रही है। वो आगे बढ़ी सब्जी मंडी में तो एक कोई भिखारी भीख मांग रहा था, जरा सा चवन्नी दीजिए चाय पीने, सेठ जी जरा आलू दे दीजिए, सेठ जी जरा ये दे दीजिए। भाई ने पूछा भैया तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम मेरा नाम है जगपाल। जगपाल मतलब समझ गए, जगत को पालने वाला, और मांग रहा है भीख। भाई तो दंग रह गए। इतने में लौट के आए तो कोई कंधे पे उठा के ले जा रहे थे आदमी, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत है, सत नाम सत है, आखिरी यही गत है, बंदे राम नाम सत है। भाई ने पूछा कि कौन मर गया? बोले अमर सिंह मर गया, गुजरात का सीएम नहीं भूतपूर्व, वैसे ही अमर सिंह, वो तो मेरा भगत है, आते हैं कथा में बैठते हो तो सीएम बेचारे, कई सीएम आते सत्संग में बैठते हैं तो हम उनके लिए क्यों बोले, लेकिन अमर सिंह तो कई होते हैं, तो जो मर गया उसका नाम भी अमर सिंह था। तो बोले राम राम सत्य। बोले कौन मर गया? बोले अमर सिंह मर गया। माई घर पहुंची, सहेलियों ने कहा बहन जी बताइए बताइए जीजाजी का नाम क्या रखेंगे क्या रखेंगे, दोस्तों ने कहा भाभी बताइए क्या नाम। बोले तुम कणा प्रसाद खा लो, नाश्ता वास्ता कर लो, दूध दूध पी लो। बोले नाम? बोले नाम वही ठीक है। बोले पति ने कहा क्या बात, आज तक तो सिर खपा गई थी, नाम बदलो नाम बदलो, वो सारे बंदे इकट्ठे हुए, अब नाम बदल दे तू, रख दे नाम। उसने भाई ने लंबी सांस ली, जोर से हंसी, बोले क्या बात है? बोले नाम नहीं बदलना है, जो है ठीक है। बोले फिर भी बता क्या हो गया तेनु? बोले ऐसे ऐसे मैं गई थी, लक्ष्मी मिली, जगपाल मिला, फिर मरता हुआ अमर सिंह मिला। उस भाई ने कड़ी बद्ध कहा, गोबर ढूंढत है लक्ष्मी, गोबर ढूंढत है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल। वो जगपाल तो नाम है, भीख मांग रहा है। गोबर ढूंढत है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मरतो देखियो, अच्छो मेरो ठन ठन पाल, अच्छो मेरो ठन ठन पाल। 2200 रुपया तो लाता है ठन ठन पाल। गोबर ढूंढत है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मरतो देखो, अच्छो मेरो ठन ठन पाल, अच्छो मेरो ठन ठन। उस्मान मियां ने देखा कि अपने भी धंधा करो, चलो कोई फलाना शहद बेचता है बहुत कमाया, तो शहद का मटका लेके बेचने गया, शहद लो शहद मीठी, शहद लो शहद, बुड़ी बड़ी आंखें, डरावना चेहरा, कोई बाहर निकले माई शहद वाले को देख के वापस अंदर चले जाए। वो दिन भर मटका घुमा घुमा के घर आया, पत्नी ने कहा क्यों बड़े मियां, पड़ोसी की तो मिर्च भी बिक जाती है और तुम्हारी शहद लोगों को नहीं अच्छी लगती। आपका बद मिजाज के कारण आपकी शहद भी कड़वी लगती है और वो खुश मिजाज का है तो उसकी मिर्च भी लोगों को अच्छे चंगे लगते और बिक जाते हैं। तो बदमिजाज जो चेहरा होता है वो श्री बिना का हृदय होता है। जयराम जी के वैभव का निखार नहीं होता हृदय में, इसलिए बदमिजाज चेहरा होता है। और जितना जितना वैभव और श्री विकसित होता है उतना उतना आपका चेहरा सौम्य होगा, उतना उतना आपकी आंखें और चेहरा कुछ आकर्षणीय खबर देगा। एक था बुद्धू हलवाई। कौन था? उसके हलवाई का धंधा चला नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे समझदार लोग बहुत थे। वो बोलते थे कि विवेकानंद ने बोला है कि मिठाई ज्यादा मिठाई खाने से बीमारियां जल्दी आती। हलवाई की दुकान साक्षात यमदूत की दुकान है, विवेकानंद ने ऐसा कहा है। तो वो पढ़े लिखे लोग मिठाई बिठाई ज्यादा, वो ज्यादा मीठा डालता तो नहीं खाते। तो बुद्धू हलवाई की दुकान चली नहीं, तो उस बुद्धू हलवाई ने क्या करा पता है तुमको? वो डिब्बे डिब्बे कुल्फी के डिब्बे नहीं आते, कुल्फी और कुल्फी के डिब्बे बनवा के मटके में रख के वो कंधे पे रख के बेचता था। कुल्फी माए वाली कुल्फी, आवाज मारता था कुल्फी रो माए वाली कुल्फी। एक बार पड़ोस में किसी की मौत हो गई तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या रोज 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 कुल्फी, कभी तो छुट्टी करो, अपने को भी तो मरना पड़ेगा, कोई कंधा देने वाला तो चाहिए। आज दूध वाले को मना कर दो और आज इस पड़ोस में मृत्यु हो गई वहां तुम जाना। बुद्ध मान गया। पत्नी ने कहा, ऐसे मेहमान होकर मत चलना, जरा कंधा भी देना। बोले ठीक है। अब कंधे पे तो रोज कुल्फी रखता था और बोलता था कुल्फी। अब वो जब चलते चलते जनादे को कंधे पे उठाया तो वजन आ गया तो भूल गया, वो जनादे पे तो मुर्दे का लोड आया और बोलता कुल्फी। अब ये कुल्फी है क्या? रोज कुल्फी बेचने जाता था ना, बोले कुल्फी। तो आज वो शमशान जा रहा है, वजन पड़ा तो बोलता कुल्फी। जैसे वजन पड़ने से कुल्फी याद आ गई, ऐसे छींक आते भी हे राम, जय राम जी की। वजन पड़ते हे प्रभु, चलते फिरते ठोकर हे राम, इससे भी कल्याण होता है। बुद्ध हलवाई का लड़का काशी पढ़ रहा था। काशी का आचार आया, गुरुकुल का आचार्य, बोले मेरा बेटा कैसा, ठीक ठाक है, खाता पीता है, मनी ऑर्डर छुड़वाता है, अभी मेथी पाक भेजा वो छुड़वाया, सियाड़ा पाक भेजू, खजूर पाक मुकलू छू, खाए छे, ले छे, छोड़ावे छे, कपड़ा पहरे छे, बफ गुलाब बनावे छे, बद्दू छे, सब कुछ है, लेकिन दो बातों की कमी है। बुद्धू हलवाई पीठ ठोकता, आखिर तो मेरा बेटा, खाली दो बातों की गलती। बोले बस बेज कमियों छे। आचार्य महोदय बे कमियों कई छे? कौन सी दो कमियां है? बोले अपनी उसको अकल नहीं और हमारी बात मानता नहीं। तो बाकी क्या बचा? ऐसे हमारे मन में ईश्वर को पहचानने की जानने की अपनी अकल नहीं और ईश्वर को पाए हुए महापुरुष और शास्त्रों को मानने की तैयारी नहीं, इसलिए हम दुखी हो रहे। बाकी तो ईश्वर विद्या इतनी आसान है, इतनी सहज है, इतनी सुलभ है कि आप घोर दुखों में परेशानियों में भी ईश्वर विद्या के बल से आनंद से जी सकते हैं। बस स्टैंड पर दो कन्याएं कॉलेज जाने के लिए खड़ी थी। एक कन्या जरा देखने में खुले रंग की थी, गोरी सी थी। तो दो रंगरूट जा रहे, एक रंगरूट ने दूसरे साथी को कहा कि यार कमाल हो गया है व्यापार, आज तो कमाल हो गया, देख देख बस स्टैंड पे दिन को चांद उगा है। तो समझदार कन्या ने अपनी सहेली को कहा कि सुन दी सुन, आज तो कमाल हो गया। तो उस कमाल बोलने वाले की दृष्टि वहां पहुंची, ध्यान पहुंचा, आज तो कमाल हो गया, हमने सुना है कि उल्लू रात को ही देखता है लेकिन इस उल्लू को तो दिन को भी चांद दिख रहा है। जिस सौंदर्य की प्रशंसा करता है उसमें क्या भरा है? बोले नाक तो तोते की चोंच जैसा लेकिन ऊपर करके देखो तो लींट भरी है, गंदगी भरी है। दांत दाड़म की कली जैसे हैं, वो तो थूक से भीगे रहते हैं। होठ ऐसे हैं वैसे प्रशंसा करते, उन होठों में तो मरे हुए बैक्टीरियाओं की बदबू मिलेगी। इस शरीर को तो देवता ने परमात्मा ने कृपा करके चमड़े का कवर दे दिया है। अगर विचार करके जरा सा कवर हटा के देखो तो कौन सा चांद किसको दिखता है? ये तो उल्लुओं को ही चांद दिखता है, महात्माओं को तो उसकी गहराई में आत्मा दिखता है। अरे देख, दिन को भी उल्लू देख रहे हैं चांद, अब उन उल्लू को जवाब क्या? मुंह दबा के छुपा के रवाना हो गए। तो जिसके पास नजर ऊंची है उसको ऊंचा दिखता है, जिसकी नजर नीची है उसको नीचा दिखता है। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। गुलाम नबी मर रहा था, मुल्ला जी को बुलाया, जो कुछ कहा मुल्ला जी ने उसने कर दिया, दान पुण्य जो कुछ करना था खुदा ताला से माफी मांगी। फिर वो मरते मरते कहता कि हे शैतान, तू भी मुझे माफ करना, दोस्त मैं तेरे कहने में नहीं चल सका, मैं सारी बातें तेरी नहीं मान सका। हे शैतान, मैं जैसा तैसा हूं, तेरा हूं, तू तो अपने कदमों में रखना, मुझसे नाराज मत होना, रूठना मत। मुल्ला कहता है कि ये क्या गड़बड़, खुदा से माफी मांग रहा है फिर शैतान से माफी मांग रहा है। उस मुसलमान भावुक ने कहा कि मुल्ला, तेरे को जो दान खैरात चाहिए वो मैंने कर दी, अब मरना मुझे है, तुझे नहीं मरना है अभी। अब मुझे पता नहीं कि मैं शैतान के हाथ लगता हूँ कि खुदा के हाथ लगता हूँ, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने शैतानत के काम भी किए और खुदा की प्रसन्नता के काम भी किए। मुझे अपने पे भरोसा नहीं मैं किसके हाथ, इसलिए दोनों के साथ कॉन्टेक्ट कर लेने दे, तेरे बाप का क्या जाता है। ऐसा ही तो अपना हाल है, कुछ अच्छाइयां भी करते हैं, बैठे हैं, बहुत अच्छे कर्म हुए, संयम से बैठे हैं, तप हो रहा है, ध्यान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जप हो रहा है, साधना हो रही है, और फिर उठेंगे तो कुछ गड़बड़ भी होती है, शैतानियत की भी, असली सुख की तरफ भी आ रहे हैं, थोड़ा नकली की तरफ भी जा रहे हैं। अब पता नहीं कि क्या होगा, वो शैतान और खुदा कह दे, आप पतन या उत्थान कह दो, बंधन या मुक्ति कह दो। आ रहा था एक आगेवान, देखा कि तोबा तोबा हद हो गई, रमजान का महीना और कुएं में चांद, तू इधर नहीं रह सकता, मैं तुझे बाहर निकालूंगा, आ जा। खेतों से आ रहा था, पुराना कुआ था, उसमें चांद दिख गया संध्या के वक्त, चांद कुएं में तू कैसे आ गया, इधर आ, तो अंदर से आवाज आया, इधर आ। बोले मैं नहीं आऊंगा, तुझे ले जाऊंगा, तो प्रतिध्वनि हुई। आखिर वो भिड़ गया और एक रस्सा लाया, घोड़ा गांठ बांधी और या अल्लाह करके रस्सा फेंका, कुएं में घुमाया, देव योग से किसी पत्थर को रस्सा चिपक गया, घोड़े गांठ लग गई रस्से पत्थर में। अब वो गड़गड़ी पे रखकर पनघट पर पैर रख के, या अल्लाह मैं तुझे तो लेके ही जाऊंगा, अंदर से आवाज आया, मैं तुझे ले जाऊंगा, अरे जा, मैं तुझे निकालूंगा, हमारे पूरे मोहल्ले के लोग भूखे मरेंगे, तू कुएं में डूब रहा है, मैं तुझे निकालूंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, अंदर से आवाज आया, ले जाऊंगा, या अल्लाह करते खींचता रहा, खींचता रहा। आखिर दोनों पैर पनघट को लगाकर जोरों से श्वास फुलाकर झटका मारा, रस्सी टूट गई और वो युवक सिर के बल से जा गिरा, माथे पे चोट लगी, थोड़ी देर मूर्छित हो गया, बाद में आंख खुली तो आकाश में चांद दिखा। बोले कोई फिक्र नहीं, थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन तेरे को लाके रख तो दिया वहां। आजकल तो आदमी की बुद्धि ऐसी भ्रमित हो गई कि कहता है भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे बुद्धू जी, तू अपनी खोपड़ी ठीक कर दे। एक बुद्धू जी था, आर्किटेक्ट हो गया, ईश्वर की दुनिया में बुद्धू था, जगत की दुनिया में होशियार था, भीम जैसा, पीपल के पेड़ के नीचे सोया, सोचा कि हे माय लॉर्ड, हो माय गॉड, यू फॉरगॉट योर सेंस, यू फॉरगॉट योर डिजाइन मेकिंग। एक 2 किलो का पौधा और कोढ़ू लगाता 200 किलो का, कोढ़ू का पौधा 1-2 किलो का और फल लगाता 200 किलो का, और यह 100 मन का तो पेड़ है और फल लगाया छोटा छोटा। जरा तो डिजाइन का ख्याल करना था, नहीं तो टेलको वालों से या टाटा वाले से सीख लेता कि जैसी गाड़ी वैसा है इंजन का डिजाइन होना चाहिए। 407 का डिजाइन तू लेलैंड में फिट करता है, और लेलैंड की इंजन तुम मारुति में रखता है, जरा टेलको वालों से या टाटा वालों से तो सीख लेता लेलैंड की इंजन मारुति में, सी 800 सीसी वाले में लेलैंड का इंजन कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, भगवान तुमने गलती की। दो शेर का केवल दो किलो का पौधा, उसमें तो पेठा लगते इतने, दो दो मन चार चार मन पेठा एक साथ ले लो, उसमें से पांच पांच दस दस पेठे होते हैं एक साथ, बीस बीस चार चार मन पेठे दो किलो के पौधे में, और यहाँ 100 मन का पेड़ और इतने बेर जितने फल। ओहो डिजाइन मेकर गॉड तू गलती खा गया। इतने में हवा का झोंका लगा और फल का एक एक नंग गिरा आर्किटेक्ट की आंख पर, आंख सूज कर टमाटा छाप हो गई। बोले इधर अगर पेठा लगाता कोहरू लगाता तो हम तो चटनी हो जाते, तूने जो किता वो भला किता है। अच्छा होया भला होया इतने पेठा नहीं लग गया। तो भगवान जो करते हैं, तुम्हारी हमारी आवश्यकता क्या है वो भगवान जानते हैं, और पूर्ति की शक्ति तुम्हारे में हमारे में उससे भगवान में ज्यादा है। इसलिए आप तो भगवान के होकर जिए और अपनी आवश्यकता की फिक्र मत करिए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए, फिर देखो जीने का मजा, हंसने का मजा, रोने का मजा, खाने का मजा, उपवास का मजा। जीने का तो मजा है, जीवन जीना एक आर्ट है। जो जीवन जीने की आर्ट नहीं सीखा वो मरने की आर्ट क्या सीखेगा। जो जीवन जीने की आर्ट नहीं सीखा तो जीते जी मरा हुआ है, और मरने की आर्ट नहीं सीखा तो बार बार मरना पड़ेगा। मरने की आर्ट सीख लो तो दोबारा नहीं पुनः मरना पड़ेगा, और जीवन की आर्ट सीख लोगे तो जीवनदाता का साक्षात्कार हो जाएगा। मरो मरो सबको कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो, सियावर रामचंद्र की। एक गुरु की बड़ी ऊंची ऊंचाई सुनी गई थी, तो किसी गृहस्थी ने सोचा कि मैं अपना एक बेटा गुरु को अर्पण करूंगा। एक आध बच्चा था, दूसरा बच्चा हुआ 5 साल का हुआ, गुरुजी नगर में आए, गुरुजी इस बेटे को आप ले जाओ, गुरुजी ले गए। अब गुरुजी रहते थे जंगल में, गुरुजी के साथ वो बेटा रहा और 18-19 साल का हुआ, तो विद्या तो सीखा, संयम भी सीखा, लेकिन संसारी ज्ञान नहीं था। तो गुरु ने कहा कि बेटा 4 बातें जीवन में चाहिए, एक तो शास्त्र ज्ञान, दूसरा गुरु का सानिध्य, तीसरा भगवान में प्रीति, और चौथा देशारटन। छोटे से छोटा आदमी महान बन जाएगा, ये 3 चीजें तो मेरे यहां से तुझे मिली। देशारटन का बेटा अभी प्रयोग, तू कुंभ का मेला हो रहा है जा, देशारटन हो जाएगा। कुछ भी देखे तो पूछना ये क्या कैसे, तो तेरा देश के विषय में अथवा रीत रिवाज के विषय में जो ज्ञान अधूरा है, 13 साल से इधर रहता है, 18 साल हो गए, तो पूछ लेना। वो ब्रह्मचारी यात्रा करते करते भिक्षा मांगा, खाया रहा अपना, तो एक जगह से बारात जा रही थी और पहली बार जंगल से बाहर आया था, उसको पता ही नहीं था बारात का मतलब क्या होता है। तो एक लड़का घोड़े पे था और बारात, बोले ये क्या है, बोले बारात है, बोले बारात क्या होता है। तो कुछ जवान लड़कों ने देखा कि ये बिल्कुल बाबा जी है, बोले बाबा जी ये शादी करने जा रहा है, बोले शादी क्या होता है, बोले ये जो दूल्हा है ना घोड़े पे बैठा उसको दूल्हा बोलते हैं, और किसी के घर कन्या है इसकी उम्र की, उसके साथ मंगनी हो गई तो अब शादी करने जाता है। तो बोले शादी क्यों करने जाता है, बोले उस कन्या को दुल्हन बना के लाएगा। बोले कन्या को दुल्हन कैसे बनाएगा, वो तो बिल्कुल एकदम पेटी पैक था उसका तो सारा माल, जगत के विषय का खोपड़ी तो पेटी पैक था, वो हिस्सा 3 हिस्से तो खुले थे, चौथा पैक था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बोले दूसरे लड़के ने दिल लगी करते कि महाराज तुम तो एकदम महाराज हो, सुनो वो कन्या को दुल्हन बनाकर लाएगा और अपने घर रहेंगे दोनों पति पत्नी। अच्छा तीसरा चौथा एकदम ओपन था। बोले आगे की भी बता दे, नई शादी है। हाँ के नई शादी है, एक बिस्तर पे आराम करेंगे मस्ती करेंगे। बोले तो हट जरा, बोले तू हट, ऐसे महाराज समय ऐसा होता है। वो महाराज बेचारा बोला ये सब सुनकर रोटी खा के जरा सो गया, छाती पे हाथ रख के सीधा सो जाए तो सपना तो आता ही है। सपना आया कि मैं खुद ही दूल्हा बन गया हूँ, अब घड़े पे जा रहा हूँ, दुल्हन ले आ रहा हूँ, फिर बिस्तर पे आराम कर रहे और उसने मारी कोनी जरा हटिए, तो बेचारा पनघट के पास ही सोया था, सपने में एक गुलाटी खाई, फिर सपने में वही देखा और नटो ना गर्मी होती है हटो, तो बेचारा ज्यादा जगह थे, साधु आदमी था, दो चार गुलाट खाई धड़ाक धुम भावड़ी में जा गिरा। तो सारे लोग जो सोए थे दोपहर को वट वृक्ष के पास मंदिर की देरी के पास, अगर धबाक लेने अल्या महाराज पड़े हो, अल्या बाओ पड़े हो, बाओ भी क्यों, अल्या बाओ बिचारो पड़े हो, ओ बाबा गिर गया, अरे बाबा गिर गया। तो लोगों ने अपना रस्से वस्से अपने जो होते ना फाड़िया वाड़िया वो सब ले लाके, बोले मैं तो इसको पकड़ के बाहर आ जाऊंगा, लेकिन उसका क्या हुआ, किसका, बोले जिसने सचमुच शादी की, मैंने तो सपने में की और मैं यहाँ गिरा हूँ। मैंने सपने में शादी की तो यहाँ गिरा हूँ बावड़ी में, जिसने सचमुच की उसका क्या हुआ, वो मेरे मेरे को पहले रिपोर्ट दीजिए। बोले तुमने सपने में की तो कमर तक के पानी में बावड़ी में गिरे हो और हंस रहे हो, जिसने सचमुच में की और सत्संग नहीं किया तो 84 लाख योनियों में गिरेगा, संसार सागर में पड़ेगा वो। तुम तो बावड़ी में पड़े हो, वो तो 84 लाख योनियों के सागर में पड़ेगा, अगर सत्संग सुन गया और ईश्वर को सुहृद मानने वाला, गुरु का ज्ञान ले लिया, गुरु के मंत्र ले लिया, फिर तो भगवान तक पहुंच जाएगा, नहीं तो वो तो ऐसी जगह गिरेगा कि निकालने वाला नहीं मिलेगा। अपन कभी माँ बाप से, आप उम्र वाले हो गए, आपके बच्चे भी आपसे हक इनने आए अपनी मनमानी करवाते तो कैसे करवाते, कि कभी ऐसे करके कभी तो कभी धीरज रखना पड़ता है, अन्याय के सामने झुकना तो नहीं है, लेकिन कभी अन्याय से के सामने झुक के भी न्याय लिया जाता है। कैसे, छोड़ा क्या समझता हो रहा हूँ, फेंट पकड़ा छोरे की, फेंट पकड़ा उसके बाप ने, अभी तेरे नाक को भिंडी बनाता हूं। बोले पिताजी आप भिंडी बनाए चाहे बैंगन बनाए, आपकी मर्जी की बात है, लेकिन मेरा एक सवाल है, पिताजी आप मेरे को जो मारते ने, मेरे को मारेंगे तुम, मेरे को सुधारने के लिए आप मारते ने। बोले हाँ। तो पिताजी आपको भी आपके बाप ने सुधारने के लिए मारा होगा। बोले हाँ। तो आपके पिताजी के पिताजी ने भी उनको सुधारने के लिए फेंट पकड़ के मारा होगा। बोले हाँ। तो उनके पिताजी ने भी उनको सुधारने के लिए मारा होगा। बोले हाँ क्यों नहीं। तो फिर उनके पिताजी के पिताजी ने भी। बोले आखिर तू क्या पूछना चाहता है। बोले पिताजी हाथ जोड़ता हूँ, मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि अपने खानदान में गुंडागर्दी कब से चली। टॉन्ट मार के न्याय ले लिया तेरन देखे। कभी कभार पिता मारता है, बच्चा कमजोर है, रो के न्याय ले लेता है, कभी देखता है कि अभी मेहमान है, अभी पापा ना नहीं बोलेंगे पिताजी। तो इतनी तो मनुष्य के बच्चे को भी बुद्धि है कि कब कैसे न्याय ले ले। तो तुम तो मनुष्य के बच्चों से तो बड़े हो, आप तो गुरु के बच्चे और भगवान के बच्चे हो रहे हो।